एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज की इस गहरी बातचीत में आप सभी का स्वागत है।
और आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो सुनाई तो बहुत देता है पर शायद हम उसे पूरी तरह समझते नहीं। सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता, या जिसे टिकाऊपन भी कहते हैं।
हाँ बिल्कुल, और हमारी चर्चा का आधार है केंट ई पोटनी की किताब जिसका नाम भी यही है, सस्टेनेबिलिटी। ये किताब ये हमें बताती है कि ये सिर्फ मतलब पर्यावरण बचाने का मामला नहीं है।
सही कहा, पोटनी दिखाते हैं कि ये कहीं ज्यादा गहरा और सच कहूँ तो जटिल मुद्दा है।
और आजकल तो ये बहुत ही जरूरी हो गया है ना, जैसे हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन है, समाज में इतनी असमानता है और अर्थव्यवस्था की भी अपनी चुनौतियां हैं।
बिल्कुल, और पोटनी की किताब की खासियत यही है कि वो इन सबको अलग अलग नहीं देखती, वो इन्हें जोड़कर देखती है। किताब का मूल सवाल यही है कि भाई हम आज की जरूरतें कैसे पूरी करें
बिना भविष्य की पीढ़ियों का हक मारे।
हाँ, बिना उनके भविष्य से खिलवाड़ किए।
ये सवाल आज हम सबके सामने है, तो थोड़ा इनके लेखक के बारे में जानते हैं। ये केंट ई पोटनी आखिर हैं कौन?
हाँ, ये जानना दिलचस्प है। वो सिर्फ कोई अकादमिक या पर्यावरण के कार्यकर्ता ही नहीं है, उनका अनुभव काफी फैला हुआ है। वो टफ्ट्स यूनिवर्सिटी और टेक्सास A&M जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर रहे हैं।
अच्छा,
किस विषय के प्रोफेसर? पब्लिक पॉलिसी, शहरी राजनीति और पर्यावरण नीति। तो आप देख सकते हैं कि उनका नजरिया कितना व्यापक है।
हाँ, मतलब वो सिर्फ एक ही चश्मे से नहीं देख रहे हैं।
बिल्कुल नहीं, वो राजनीति विज्ञान, शहरी नियोजन, पर्यावरण अध्ययन, इन सबको मिलाकर सस्टेनेबिलिटी को समझते हैं। और उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं है, दशकों तक जमीनी स्तर पर काम किया है, सरकारों को, संस्थाओं को सलाह दी है।
तो उनकी बातें सिर्फ किताबी नहीं है?
नहीं, उनमें जमीनी हकीकत की समझ है। उनकी एक और किताब है टेकिंग सस्टेनेबल सिटीज सीरियसली।
अच्छा,
इससे पता चलता है कि उनका फोकस शहरों पर, मतलब स्थानीय स्तर पर इसे कैसे लागू किया जाए, इस पर भी रहा है। वो संभावनाएं भी देखते हैं और मुश्किलें भी पहचानते हैं। बड़ा व्यवहारिक नजरिया है उनका।
तो फिर ये किताब किस बारे में, इसका मुख्य संदेश क्या है?
देखिए, सबसे बड़ी बात जो पोटनी कहते हैं वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी कोई मंजिल नहीं है कि पहुंच गए और काम खत्म।
अच्छा, तो फिर क्या है?
ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक डायनामिक प्रोसेस, जटिल है और अक्सर इसमें अलग अलग हितों का टकराव भी होता है। किताब हमें वो गो ग्रीन जैसे नारों से आगे ले जाती है।
हाँ, वो नारे जो सुनने में अच्छे लगते हैं पर शायद उतने गहरे नहीं होते।
बिल्कुल, और किताब का एक और मकसद है इस शब्द को साफ करना। आजकल तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है इसे।
हाँ, मैंने देखा है कंपनियां बहुत इस्तेमाल करती हैं।
हाँ, अपनी छवि चमकाने के लिए, जिसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, या फिर लोग इसे सिर्फ पर्यावरण से जोड़कर देखते हैं। पोटनी कहते हैं नहीं, ये तीन बराबर के स्तंभों पर टिकी है।
तीन स्तंभ कौन कौन से?
पर्यावरण सुरक्षा, एनवायरमेंट,
हाँ,
आर्थिक व्यवहार्यता, इकोनॉमी, और सामाजिक समानता, इक्विटी। अंग्रेजी में 3 E's कहते हैं।
एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इक्विटी।
अच्छा हाँ, और ये तीनों आपस में गुंधे हुए हैं। पोटनी से एक तिपाई की तरह देखते हैं, एक पाया हटा तो सब गिर जाएगा।
हम दिलचस्प उपमा है।
किताब हमें इसकी परिभाषाओं से लेकर इसके इतिहास तक ले जाती है, कैसे ये सोच विकसित हुई, वो ब्रंटलिन कमीशन की परिभाषा।
हाँ, वो वर्तमान की जरूरतें पूरी करना वाली।
हाँ, बिना भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए। लेकिन वो कहते हैं कि ये तो बस शुरुआत थी। किताब सवाल उठाती है, असली मतलब क्या है सस्टेनेबिलिटी का, और इतनी अलग अलग सोच वाली दुनिया में इसे हासिल कैसे करें।
तो ये एक तरह से हमें सोचने का फ्रेमवर्क देती है।
बिल्कुल, इसमें कमजोर बना मजबूत, सस्टेनेबिलिटी की बहस है, प्रगति को कैसे मापें, GDP से आगे क्या, इस पर बात है, और फिर शहरों में, कंपनियों में, यूनिवर्सिटीज में ये कैसे लागू हो रहा है, इसके उदाहरण भी हैं। ये एक जरूरी टूलकिट है, आप कह सकते हैं।
चलिए कुछ खास बातों पर थोड़ी और गहराई में चलते हैं, शुरुआत परिभाषा से ही करते हैं। आपने ब्रंटलैंड परिभाषा का जिक्र किया।
हाँ,
पोटनी कहते हैं कि ये शब्द इतना पॉपुलर हो गया है कि इसका मतलब भी धुंधला सा गया है।
ब्रंटलैंड परिभाषा 1987 बहुत अहम थी, पर वो सिर्फ शुरुआत थी। उसमें भी सिर्फ पर्यावरण नहीं, इंसानी जरूरतें और भविष्य की पीढ़ियां शामिल थीं। मतलब सामाजिक और नैतिक पहलू शुरू से थे।
और ये सोच अचानक तो नहीं आई होगी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब बताती है कि कैसे धीरे धीरे ये समझ बनी। पहले संरक्षणवादी आंदोलन थे, फिर 1962 में रेचल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग आई।
हाँ, कीटनाशकों पर, उसने तो दुनिया हिला दी थी।
बिल्कुल। फिर 70 के दशक में लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट आई। इन सब ने धीरे धीरे ये दिखाया कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हमारे कामों का असर पड़ता है। चिंता सिर्फ संसाधन बचाने से बढ़कर सामाजिक न्याय और आर्थिक मॉडल तक पहुंच गई।
अब उन तीन स्तंभों पर आते हैं, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समानता। पर्यावरण वाला तो शायद सबसे ज्यादा समझा जाता है।
हाँ, मतलब हमारी हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, बायोडायवर्सिटी, इन सब की रक्षा करना, प्रदूषण कम करना, और ये देखना कि हम संसाधन उतनी ही तेजी से इस्तेमाल करें जितनी तेजी से वो दोबारा बन सकते हैं। क्लाइमेट चेंज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज।
और आर्थिक स्तंभ, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है जैसा आपने कहा।
नहीं, ये सिर्फ जीडीपी ग्रोथ नहीं है, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की बात है जो चले भी, लोगों को काम भी दे, लेकिन पर्यावरण और समाज को नुकसान पहुंचाए बिना। इसमें सर्कुलर इकोनॉमी जैसी नई सोच है,
जहां वेस्ट भी एक रिसोर्स बन जाता है।
हाँ बिल्कुल, फेयर ट्रेड है, और वो जो छुपी हुई पर्यावरणीय लागतें होती हैं, एक्सटर्नैलिटीज, उनको भी हिसाब में लेना।
और तीसरा स्तंभ जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, सामाजिक समानता।
हाँ, सोशल इक्विटी। इसका मतलब है समाज में न्याय हो, सबको मौके मिले अच्छी सेहत, शिक्षा, साफ पानी, और बहुत जरूरी बात, पर्यावरण के फायदे और नुकसान का बंटवारा सही हो।
मतलब ऐसा ना हो कि प्रदूषण कोई करे और भुगते कोई और।
बिल्कुल, इसी को पर्यावरणीय न्याय या एनवायरमेंटल जस्टिस कहते हैं। पॉटनी बार बार यही कहते हैं कि ये तीनों अविभाज्य हैं। असली सस्टेनेबिलिटी तभी होगी जब तीनों का संतुलन होगा।
किताब में कमजोर बनाम मजबूत सस्टेनेबिलिटी की भी बात है, ये क्या है?
हाँ, ये थोड़ी अकादमिक बहस लगती है, पर है बहुत जरूरी। कमजोर सस्टेनेबिलिटी मानती है कि आप एक तरह की पूंजी को दूसरी से बदल सकते हैं, मतलब प्राकृतिक पूंजी जैसे जंगल को मानव निर्मित पूंजी जैसे टेक्नोलॉजी या पैसा।
जैसे जंगल काटकर पैसा कमाया और स्कूल बना दिया।
हाँ, इस सोच के हिसाब से शायद ये ठीक है अगर कुल मिलाकर पूंजी बनी रहे, लेकिन मजबूत सस्टेनेबिलिटी कहती है नहीं।
अच्छा, क्यों नहीं?
वो कहती है कि कुछ प्राकृतिक चीजें जैसे साफ हवा, स्थिर जलवायु, बायोडायवर्सिटी, ये क्रिटिकल नेचुरल कैपिटल है, इनकी जगह कोई और चीज नहीं ले सकती। ये खत्म तो सब खत्म, इन्हें हर हाल में बचाना है।
तो ये तो विकास को देखने का नजरिया ही बदल देता है।
बिल्कुल। क्या हम प्रकृति को बस एक इस्तेमाल की चीज मानते हैं या जीवन का आधार, ये सवाल यहाँ उठता है।
फिर एक और बड़ी चुनौती, ऐसे मापे कैसे तरक्की को?
हाँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ जीडीपी देखते रहे तो हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। जीडीपी तो प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री से भी बढ़ता है।
सही बात है, तो क्या विकल्प है?
पॉटनी कई विकल्पों की बात करते हैं, जैसे जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर जीपीआई, ये जीडीपी में से पर्यावरण और समाज को हुए नुकसान की कीमत घटाता है, या फिर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट,
वो जो बताता है कि हम धरती पर कितना बोझ डाल रहे हैं।
हाँ भाई, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो है ही, सेहत, शिक्षा, आय देखता है। पुटनी कहते हैं कि कोई एक जादुई नंबर नहीं है, शायद हमें कई इंडिकेटर्स का एक डैशबोर्ड चाहिए, और हम क्या मापते हैं ये दिखाता है कि हम किन चीजों को महत्व देते हैं।
ये तो हुई सिद्धांत की बात है, किताब ये भी देखती है कि असल दुनिया में क्या हो रहा है।
हाँ बिल्कुल, शहर इस मामले में बड़ी प्रयोगशालाएं हैं। शहरों में स्मार्ट ग्रोथ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर, ग्रीन बिल्डिंग्स, कचरा प्रबंधन, यहाँ तक कि अर्बन फार्मिंग यानी शहरों में खेती भी हो रही है।
और कंपनियां वो भी कुछ कर रही है।
कंपनियां भी आप ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करती है, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। CSR और ESG आजकल बड़े शब्द है, निवेशक भी उन कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं जो इन मामलों में अच्छा कर रही हैं।
लेकिन क्या ये सब सच में होता है या सिर्फ दिखावा है, वो ग्रीन वॉशिंग वाली बात?
हाँ, वो खतरा हमेशा रहता है, पोटनी इस बारे में सावधान करते हैं। और यूनिवर्सिटी कैंपस भी एक उदाहरण है, वो छोटे समाज की तरह सस्टेनेबिलिटी को अपने कामकाज, पढ़ाई और रिसर्च में लाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन ये सब आसान तो नहीं होगा, चुनौतियां भी होंगी।
बहुत चुनौतियां हैं, किताब उनकी भी बात करती है। सबसे बड़ी शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, सस्टेनेबिलिटी के लिए लंबा सोचना पड़ता है और राजनीति अक्सर छोटी अवधि के फायदों में उलझी रहती है।
और हमारी अर्थव्यवस्था जो लगातार ग्रोथ चाहती है, उसका क्या?
हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, क्या लगातार खपत और ग्रोथ वाला मॉडल कभी टिकाऊ हो सकता है? फिर वैश्विक न्याय के मुद्दे हैं, अमीर और गरीब देशों की जिम्मेदारियां। तकनीक मदद कर सकती है, पर अकेली तकनीक काफी नहीं है। हमें अपनी सोच और सिस्टम बदलने होंगे।
तो अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात तो यही है कि सस्टेनेबिलिटी कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। लगातार सीखते रहने, संतुलन बनाने और सुधार करते रहने की प्रक्रिया।
और दूसरा?
वो तीन स्तंभ, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समानता। ये अलग अलग नहीं है, आपस में जुड़े हैं। एक को नजरअंदाज किया तो पूरी इमारत ढह जाएगी। हमें सिस्टम थिंकिंग अपनानी होगी। जैसे भारत में ही कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो सिर्फ पैसा नहीं, लोगों पर असर और पर्यावरण पर असर सब देखना होगा।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। तीसरा क्या होगा?
वो अंतर पीढ़ीगत समानता वाली बात, इंटरजेनरेशनल इक्विटी। हम आज जो कर रहे हैं उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाएं।
और चौथी बात?
मेरे लिए वो कमजोर बनाम मजबूत सस्टेनेबिलिटी वाली बहस को समझना। इससे हमें पता चलता है कि नीतियों के पीछे सोच क्या है। क्या हम प्रकृति को बस इस्तेमाल की चीज समझ रहे हैं?
और एक आखिरी बात?
ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है, ये गहरा राजनीतिक मुद्दा है। इसमें शक्ति, हित और न्याय के सवाल जुड़े हैं। किसका विकास, किसकी कीमत पर, कौन तय करेगा?
किताब में कुछ पंक्तियां या विचार ऐसे भी हैं जो याद रह जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे एक जगह पॉटनी कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब त्याग नहीं बल्कि अलग तरह के चुनाव करना है, जो आज के फैसलों को लंबे समय की भलाई से जोड़ते हैं। ये सोच बदलता है कि टिकाऊ जीवन मुश्किल ही होगा।
हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही। और
वो तीन स्तंभों वाली बात को फिर से दोहराते हुए, ये तीन स्तंभ अलग अलग नींव नहीं बल्कि आपस में जुड़े सहारे हैं जिन्हें एक साथ काम करना होगा, वरना वे सब गिर जाएंगे। इस सिस्टम सोच पर जोर देता है।
पर्यावरण न्याय पर भी कुछ कहा है?
हाँ, वो कहते हैं पर्यावरणीय समस्याएं और उनके समाधान समाज में बराबर नहीं बंटे। कौन जीतता है, कौन हारता है, ये समझना न्यायपूर्ण नीतियां बनाने के लिए जरूरी है। ये भारत जैसे देश के लिए कितना सच है।
और तकनीक के बारे में?
उस पर उनका नजरिया संतुलित है। नवाचार जरूरी है पर पर्याप्त नहीं। हमें ऐसी संस्थाएं, नीतियां और सामाजिक आंदोलन भी चाहिए जो नवाचार को टिकाऊ लक्ष्यों की ओर ले जाएं। सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा।
और आखिर में
वो बात जो शायद मूल मंत्र है, सस्टेनेबिलिटी एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। प्रकृति और एक दूसरे के साथ हमारे रिश्तों को लगातार सीखने, ढालने और सुधारने की प्रक्रिया, मतलब कोशिश जारी रखनी है।
तो अब असली सवाल, हम इन विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें?
देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर ये सिर्फ रिसाइकलिंग से आगे की बात है। हमें सोचना होगा कि हमारे बड़े चुनाव, हम कहाँ रहते हैं, कैसे आते जाते हैं, क्या खाते हैं, उनका असर क्या है।
जैसे
शायद रोज गाड़ी चलाने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल इस्तेमाल करना, या कम मीट खाना। इन चीजों का असर ज्यादा बड़ा हो सकता है।
और बिजनेस के लिए क्या संदेश है?
उनके लिए संदेश है कि सिर्फ ग्रीन विज्ञापन ना छापें, अपनी पूरी सप्लाई चेन को देखें। क्या आपके वर्कर ठीक से रह रहे हैं? क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो रिपेयर हो सके या बस यूज एंड थ्रो है? वो तीनों स्तंभ, लोग, ग्रह, मुनाफा, सबको साथ लेके चले।
और हम नागरिक के तौर पर क्या कर सकते हैं?
हम अपने चुने हुए नेताओं से सवाल पूछ सकते हैं। जब कोई नया प्रोजेक्ट आए तो जानकारी मांगे, इसका पर्यावरण पर क्या असर होगा, स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा, क्या सामाजिक बराबरी का ध्यान रखा गया है।
और जो लोग नीतियां बनाते हैं उनके लिए
प्रेरणा है कि वो GDP के मोह से बाहर निकलें। समाज की सच्ची तरक्की मापने के लिए GPI या HDI जैसे बेहतर पैमाने अपनाएं। हर नीति बनाते वक्त सोचें कि तीनों स्तंभों पर इसका क्या असर पड़ेगा।
तो आपके लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख है इसकी जटिलता को स्वीकारना। कोई आसान सीधा जवाब नहीं है, ये हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। और ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, ये न्याय का, राजनीति का, हम सबके जीने के तरीके का सवाल है।
और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये एक यात्रा है। इसका मतलब है कि हम सब सीख रहे हैं, हम सब प्रयोग कर रहे हैं, गलतियां भी होंगी पर हमें कोशिश करते रहना है। ये किताब उम्मीद देती है कि अगर हम समझदारी और मिलकर काम करें तो बदलाव ला सकते हैं।
हाँ, और एक आखिरी सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं,
क्या
कि क्या हमारी मौजूदा आर्थिक व्यवस्था, जो हमेशा ग्रोथ 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 पर जोर देती है, क्या वो वाकई कभी सस्टेनेबल हो सकती है? या हमें विकास का मतलब ही बदलना होगा, सिर्फ ज्यादा उत्पादन नहीं बल्कि सबकी भलाई वेलबींग पर ध्यान देना होगा?
ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।